Discharge from liability can also take place when there is delay in presentation. See, all instruments have a time frame. There is a time frame for payment of all instruments. If it is a demand bill, it has a period of 3 years. You can demand payment within the period of 3 years. After 3 years, the right is extinguished. It gets barred by limitation. A check, banker's check, any check drawn on a bank. These are all valid either for 3 months or 6 months. So you have to demand payment within that period. Now, if you are going to demand payment after the expiry of 6 months or 12 months or 3 years, the payment is barred by delay in presentation. So, if a check is not presented for payment within a reasonable time, say 6 months, the drawer is discharged from the liability to pay. There is no condonation of delay. I have issued a check in your favor. I have given it to you today. Then within 6 months, you can go to the bank and ask for payment. If you don't go to the bank within that 6 months period, for some reason, maybe you have gone abroad or maybe you have misplaced the check, you don't find it and then you get it after 8 months. And then you go to the bank and say, give me payment. The bank will say, sorry, time lapse ho gaya. Then what happens? I am no more responsible to make payment to you under that check. That instrument is now no more valid. It is a stale check and that is why main chhut gayi. I need not pay under that instrument. If at all there is a relation between you and me, I can give you another check with fresh date. But that instrument is stale, it is no more valid. And that is why the drawer is discharged from his liability to pay. Now the drawer cannot condone the delay either. ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, उसी चेक पे डेट चेंज करके फिर वहाँ फिर से साइन करके फिर दोबारा इश्यू कर सकता है. बट द सेम चेक विद द ओल्ड डेट कैन नॉट बी मेड पेएबल. द ड्रॉअर इज डिस्चार्ज एज फार एज दैट इंस्ट्रूमेंट इज कंसर्न्ड. इफ द बैंक फेल्स इन द इंटरवेनिंग पीरियड, मान लो मैंने आज के डेट में आपको चेक इश्यू करके दिया, दिस चेक इज वैलिड फॉर 6 मंथ्स. So the check is dated today, say 9th of October. Now it is valid for 6 months, that means it is valid up to 9th of April. I have given you a check for 10,000 rupees. Ab ye 9th April 2014 tak check valid hai. But uske pehle yadi bank, the bank on which the check is drawn, wo check bank fail ho gaya. Bank is gone into liquidation, bank doob gaya. Then what happens? I issued the check to you on 9th October. 9th October, I have issued the check for 10,000 rupees. मेरे खाते में 10,000 क्या 15,000 बैलेंस है. तो अभी आपने चेक प्रेजेंट नहीं किया समय पे. द बैंक फेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, डूब गया बैंक. यू कुड हैव गॉन एंड टेकन द पेमेंट एनी टाइम फ्रॉम 9th October टू जनवरी, पर आप गए नहीं, पैसे नहीं निकाले, इसीलिए मैं छूट गई. The drawer is no more liable. So the drawer's liability is gone. The payee, the beneficiary of the check, cannot come and demand payment from me. Arey bank to doob gaya, tum do paisa mujhe. Or give me check of some other bank. I will tell, no, sorry, I don't have any responsibility to pay to you. Maine check de diya tha aapko 9th October ko, aapne payment nahi liya, bank fail hua, to mera dosh nahi hai. You should have gone and taken the money from the bank when the bank was working. Now the bank is collapsed, don't come and ask the payment to me. I am not responsible. I am justified in saying this. Because bank failure is not my job or my responsibility or my lookout. So if the bank has failed, why should I be penalized? I had done the work in good faith by issuing the check to you. Well in advance, I had given the amount to you, the check to you, you could have gone and taken the money from the bank. Since the bank collapsed, I am now free from liabilities. But again, there is a small catch here. I have given you a check for 10,000 rupees. I have given it to you on 9th of October. The bank collapses in January. At the time of collapse, the balance in my account was 8,000, not 10,000 or 15,000. मेरे खाते में उस समय पे 8,000 बैलेंस है. नाउ दिस पर्सन द बेनिफिशियरी द होल्डर ऑफ द चेक ही हैज नॉट गॉन एंड टेकन पेमेंट फ्रॉम द बैंक. ही कुड हैव गॉन एंड टेकन व्हेन द बैलेंस वॉज देयर व्हेन द बैंक वॉज वर्किंग, पर उसने निकाले नहीं, पैसे लिए नहीं. फिर बाद में बैंक डूब गया. नाउ ही कैन कम एंड डिमांड पेमेंट टू मी फ्रॉम मी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 रुपीज. मेरे खाते में 8,000 बैलेंस था तो 8,000 के लिए मेरी लायबिलिटी खत्म. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस विच वॉज देयर इन द बैंक एट द टाइम ऑफ इट्स लिक्विडेशन, एट द टाइम द बैंक फेल्ड. वॉट एवर बैलेंस वॉज देयर इन द बैंक अकाउंट टू दैट एक्सटेंट आई एम नो मोर लायबल. फॉर द बैलेंस अमाउंट यस आई हैव टू मेक द पेमेंट टू द बेनिफिशियरी. सो इफ द बैंक फेल्स इन द इंटरवेनिंग पीरियड द ड्रॉअर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी to the extent of the balance he had with the bank at the time of failure. Jo bhi balance tha khate mein, to that extent his liability is extinguished. Pura balance tha to pura hi liability chhut. Part amount tha to part amount ke liye chhut. Balance amount he has to pay to the payee by operation of law. So discharge from the liabilities can happen by operation of law. Now, what is this operation of law? That means the law protects the parties to the instrument. They say the parties to an instrument get discharged by lapse of time. The first law, law of limitation. If I have issued an instrument today, if it is a demand instrument, as I said, it is valid for 3 years. Any demand instrument, promissory note or bill of exchange or a check, it's a demand instrument. It is a check, has a different footing. It is valid only for 3 months or 6 months, whatever is mentioned on the check. Nothing is mentioned, it is 6 months. But a promissory note or a bill of exchange, a demand instrument, is valid for 3 years. 3 saal ke andar payment mang sakte hain. Ab 3 saal mein paise nahi manga to fir no more liability for me, I am completely freed, chhut gayi main. So law of limitation says that there is no responsibility or liability on the part of the drawer to make any payment. So the drawer's liability is totally discharged. So all the parties, they are barred by limitation. 3 saal ho gaye khatam, abhi tumhara right nahi hai, you cannot demand payment. Either from the endorsers or endorsees or whatever, subsequent parties also, from the drawer and other people. So the law of limitation says that only 3 year period is allowed. If there is a due date, it's not a demand instrument, it is a usance bill, a time bill, and there is a due date, then from that due date, 3 years onwards. That is the limitation. By merger of the debt under the instrument to any other judgment debt, opted against the acceptor or endorser. Now see, I have issued a check to you. You are going to get payment under this check, say 10,000 rupees. So, aapko mere paas mein se 10,000 rupya milna hai. Now suppose you have filed a case in the court against me for some other suit. I have cheated you and I have not made some payment or have not given you the goods that you need. मैंने सप्लाई बराबर नहीं किया, इसलिए आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया है और उस केस में आपको 1 लाख रुपया मिलना है. तो अभी कोर्ट में क्या जजमेंट देंगे? तो आप कोर्ट में बोल सकते हैं कि देखो मुझे तो ये 1 लाख चाहिए, पर इसने और एक चेक दिया 10,000, वो चेक का भी उसने पैसे नहीं दिए मुझे, तो 10,000 भी इसमें ऐड कर लो, तो 1,10,000 का वो जजमेंट दे देते हैं. तो उन्होंने क्या किया, ये 10,000 और वो 1 लाख मिलाकर मर्ज द टू टूगेदर और एक सिंगल जजमेंट पास कर दिया. सो दैट मीन्स दिस 10,000 इज इंक्लूडेड इन द अदर जजमेंट फॉर द अदर लाइबिलिटी. देन वॉट हैपन्स, बाई मर्जर ऑफ द डेट अंडर द इंस्ट्रूमेंट टू एनी अदर जजमेंट डेट ऑप्टेन्ड अगेंस्ट द एक्सेप्टर और एंडोर्सर. सो नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर 10,000 इज नाउ इंक्लूडेड इन द अदर जजमेंट डेट. आपको तो पैसे मिलना है 1 लाख का और ये 10,000 भी उसमें शामिल हो गया, तो 1,10,000 का जजमेंट आपके फेवर में आ गया. तो यू आर गोइंग टू गेट 1,10,000 फ्रॉम द पर्सन अगेंस्ट हुम यू फाइल द सूट थ्रू द कोर्ट. तो अब ये 10,000 का चेक इस हैज नो मीनिंग, सो आई हैव डिस्चार्ज्ड बिकॉज इट इज टेकन केयर ऑफ इन अनदर पेमेंट by insolvency of the maker, acceptor or endorser. If the maker of the bill, the acceptor of the bill or the endorsers, they are declared insolvent, there is a law of insolvency. Now the law of insolvency takes care of payments, rights and obligations to the creditors, debtors as per their precedence, as per the priorities. So this insolvency act will say who should get what. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑन दैट इंसॉल्वेंसी पेटिशंस, उसमें ये इंक्लूड होने के कारण इंडिपेंडेंटली दिस इंस्ट्रूमेंट हैज नो मीनिंग ना. दिस नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट द चेक और अ बिल ऑफ एक्सचेंज और द प्रोमिसरी नोट इज नॉट टू बी एक्सरसाइज, इट नॉट टू बी फॉट अगेंस्ट. सो यू कैन गो थ्रू द इंसॉल्वेंसी कोर्ट एंड गेट द पेमेंट. So that is why the parties to the instrument are all discharged. The maker, acceptor or endorser, they have been declared insolvent. So jab wahan insolvent declare ho chuke hain, to ye ek particular instrument ke liye they are not liable. They are liable for many, liabilities. To ye ek alag se unko liability establish karne ki zarurat nahi hai. By payment. We saw earlier payment in due course. By payment in due course, a payer or banker gets discharged. In the case of a check, it is specifically the banker who has to make the payment. Banker is the drawee. So in the case of a check, payment in due course discharges the bank from liability, even if payment is made to a wrong person. चेक इज ड्रॉन इन फेवर ऑफ बी बट बैंक ने सी को पेमेंट कर दिया क्योंकि बी का नाम काट के सी का नाम डाला हुआ है बट इट इज नॉट विजिबल एट ऑल इवन विद ड्यू केयर विथ लॉट ऑफ प्रिकॉशन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक आउट सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर इज जेन्युइन इट इज नॉट अ फोर्स सिग्नेचर इट इज वेरी मच जेन्युइन द इंस्ट्रूमेंट इज जेन्युइन सिर्फ क्या हुआ है बी का नाम काट के सी का नाम डाल दिया बट That change is very, 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 very इतना perfectly किया हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि B change हुआ है C के नाम पे. So even after taking all those good care, the bank has made the payment in good faith without negligence to the person who it believes is B, and it has made the payment. Then even if the payment is made to the wrong person, the bank is discharged from liability. Because it is a payment in due course. But if the drawer signature is forged, the bank can never get discharged from liability. As I told you, if the check is genuine, the drawer signature is genuine, then the bank gets discharged, even if money goes to a wrong person. But if the drawer signature is forged, a forged instrument is not a valid instrument in law. That is why a banker has to really verify the signature ki bhai ye sahi correct hai ki nahi apne record ke hisab se ye sahi barabar hai ki nahi jo customer hai apna usi ka signature hai ki nahi wo signature verify karenge tabhi wo payment karenge if the signature is forged the bank will never be discharged from the liability bank can be held responsible aur wo jo drawer hai customer bank ka customer he can file a case against the bank and require money from the bank कि मेरा सिग्नेचर किसी और ने फोर्ज किया आपने कैसे पेमेंट कर दिया सो द बैंक विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल द बैंक इज डिस्चार्ज्ड व्हेन इट मेक्स पेमेंट इन ड्यू कोर्स टू अ बेरर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एंडोर्समेंट देयर ऑन देयर इट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट द मनी हैज टू गो टू द पर्सन टू हूज ऑर्डर इट इज मेड If it is a bearer instrument, the very word bearer means money has to be given to the bearer of the instrument, the holder. So when the bank is making payment to the holder of the instrument, to the person who they believe is really entitled to get the payment, it is a payment in due course. they do not have any responsibility or liability even if the money is paid to a wrong person, because it's a bearer instrument. या फिर उसके पीछे endorsement in blank है और endorsement in full, but it is a bearer instrument. Since it is a bearer instrument, once a bearer, always a bearer, इसलिए bank has done the right job, it has made a right payment and it is treated as payment in due course and the bank is discharged. There is no question of bank being liable for wrong payment. It is treated as a right payment because it is payment in due course. The discharge to the bank is also available or to the parties of a bill of exchange where there are material alterations, but these material alterations are not agreed to by all the parties. There are alterations, changes are made in the bill after they are issued, but those material alterations are not agreed to by all the parties. So, jisne agree nahi kiya, wo chhut jate hain. Material alterations which affect the rights of a party adversely will discharge them. So, if there are material alterations which are affecting the rights of a party, now suppose a bill of exchange is prepared for 3 lakhs rupees. It is drawn by A on B to be payable to C. Now, C tells B ki 3 lakh nahi, mujhe 3.5 lakh chahiye, kyunki mujhe byaj bhi chahiye, to ye 3 lakh ko 3.5 karo. तो अमाउंट चेंज करता है फिर बी, बी इज चेंजिंग द अमाउंट फ्रॉम 3 to 3.5, 3.5 लाख कर दिया उसने. तो अभी क्या होगा, ये उसने ए को बताया नहीं, ही हैज चेंज द अमाउंट फ्रॉम 3 लाख, ही हैज मेड इट 3.5, बट ही डजंट इन्फॉर्म ए, इट इज ओनली बिटवीन बी एंड सी. नाउ दिस इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन बिकॉज द अमाउंट हैज बीन चेंज्ड. वेयर द अमाउंट इज चेंज्ड एंड द ड्रॉअर इज नॉट इन्फॉर्म्ड, ड्रॉअर की लाइबिलिटी खत्म, ही इज रिलीव्ड. बिकॉज और इवन इफ ही इन्फॉर्म्स द ड्रॉअर बट ड्रॉअर डजंट एग्री, नहीं नहीं मैंने तो बिल 3 लाख के लिए बनाया तो ये 3 ही लाख रहेगा, ऐसे कैसे चेंज कर दिया, आई एम नॉट एग्रीइंग टू इट. फिर भी वो दे स्टिक टू 3.5 लाख्स बी एंड सी, देन ए इज रिलीव्ड फ्रॉम द लाइबिलिटी, ए इज डिस्चार्ज्ड. सो मटीरियल ऑल्टरेशंस विच अफेक्ट द राइट्स ऑफ अ पार्टी एडवर्सली, क्योंकि अभी क्या हुआ, 3 लाख के बदले 3.5 लाख की लायबिलिटी आ गई ए की, बिकॉज इफ बी डजंट पे अल्टीमेटली ए विल हैव टू पे, दैट इज द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे एनी मटेरियल ऑल्टरेशन विल डिस्चार्ज द पार्टी बिकॉज ही डजंट एग्री टू इट. बिकॉज सी मटेरियल ऑल्टरेशंस रेंडर द इंस्ट्रूमेंट वॉइड अगेंस्ट दोज हु आर पार्टीज टू सच ऑल्टरेशंस. इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड फॉर 3 लाख्स and the amount is changed to 3.5 lakhs and the drawer does not sign it, he is not signing against the change in the amount. In that case what happens, for A this instrument is null and void because the material alteration has changed the status of the check, and that is why for A this instrument is void. So, he is not party to the change and that is why he is discharged from the liability. Material alterations are those which change the identity of the contract between two parties and affects their rights and liabilities. Now, these are the material alterations, any material alteration which affects the rights between the parties. It changes the identity of the contract. See, the contract was for 3 lakhs payment. Ab 3 ko 3.5 kar diya, to contract hi badal gaya. तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट बदल गया तो द पार्टी हु इज अफेक्टेड एडवर्सली ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी. नाउ व्हाट आर द मटेरियल ऑल्टरेशंस दैट विल अफेक्ट द स्टेटस ऑफ द पार्टी, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, ऑल्टरेशन इन द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. आई हैव प्रिपेयर द इंस्ट्रूमेंट विद अ पर्टिकुलर डेट, समबडी एल्स चेंजेस द डेट. They want to prepone the payment or they want to postpone the payment to favor somebody. तो ये डेट जब बदल जाता है तो पेमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या वट एवर. सो दिस इज अ मटीरियल ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन ऑफ द सम पेएबल, एज आई गिव द एग्जाम्पल 3 लाख का 3.5 कर दिया. योर टाइम ऑफ पेमेंट, आई एम मेकिंग अ बिल फॉर 45 डेज, दैट फेलो गोज एंड मेक्स इट 60 डेज, तो उसको 15 दिन का टाइम और दे दिया, मोहलत दे दी. या फिर मैंने बिल बनाया 90 डेज के लिए विथ यूसेंस पीरियड 90 डेज एंड दिस फेलो रिड्यूसेस इट टू 30 डेज. सो वॉट एवर द टाइम ऑफ पेमेंट देन द प्लेस ऑफ पेमेंट इफ दैट इज ऑल्सो चेंज्ड प्लेस ऑफ पेमेंट आई वॉन्ट द पेमेंट टू बी मेड इन मुंबई और वो बोलता है कि नहीं मैं कोचिन में पेमेंट करूंगा क्योंकि मेरा माल आएगा वहां पे शिप विल कम देयर एंड व्हेन आई रिसीव द कंसाइनमेंट दैट टाइम आई विल मेक द पेमेंट सो आई विल पे टू यू इन कोचिन एंड दिस फेलो सेज नहीं मुझे मुंबई चाहिए और मुंबई को काट के कोचिन कर दिया तो अगेन इट इज अ मटीरियल ऑल्टरेशन आई डोंट वॉन्ट पेमेंट इन कोचिन आई वॉन्ट द पेमेंट इन मुंबई तो फिर आई एम रिलीव डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी वेन दीज टू पीपल टूगेदर मेक द चेंजेस सो इफ द प्लेस इज चेंज्ड दैट इज अ मटीरियल ऑल्टरेशन द रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज इन द बिल ऑफ एक्सचेंज आई राइट दैट यू पे ₹3 lakhs टू सी विथ इंटरेस्ट एट 20% एंड दिस फेलो रिमूव्स दैट 20 एंड चेंजेस इज टू 15% और 25% कम ज्यादा वॉट एवर इट इज देखो एग्रीमेंट मैंने जो किया उस एग्रीमेंट के हिसाब से एग्रीमेंट मीन्स द बिल ऑफ एक्सचेंज यू नो दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एग्रीमेंट ये था कि 3 lakhs अमाउंट विल बी पेड विथ इंटरेस्ट एट 20% फॉर द पीरियड ऑफ डिले अब उसने 20% को चेंज करके 10% कर दिया या 15% कर दिया विदाउट माई कंसेंट विदाउट माई एग्रीइंग टू इट इट इज अ मटीरियल ऑल्टरेशन एंड इफ सच अ मटीरियल ऑल्टरेशन टेक्स प्लेस आई एम रिलीव फ्रॉम द लायबिलिटी ऑल्टरेशन बाय एडिशन ऑफ अ न्यू पार्टी आई हैव ड्रॉन अ बिल ऑन बी आस्किंग हिम टू पे टू सी अब बी के पास एक्सेप्टेंस के लिए गया तो बी क्या करता है कि आई विल पे टू सी एंड डी ही इज एडिंग वन मोर पार्टी डी का नाम भी डाल दिया उसने एंड ही इज नॉट इन्फॉर्मिंग मी अबाउट इट आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एडिशन ऑफ अ न्यू नेम न्यू पार्टी इन दैट केस आई विल बी रिलीव्ड ऑफ द लायबिलिटी बिकॉज दिस इज अ मटीरियल ऑल्टरेशन एडिंग समबडी एल्सेस नेम ऑल्टरेशन बाय एडिंग द प्लेस ऑफ पेमेंट इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वी वर सेइंग इट इज चेंज इन द प्लेस मुंबई का कोचिन कर दिया यहां पे क्या लिखा है कि वी आर एडिंग वन मोर प्लेस मुंबई में पेमेंट होगा 3 lakh का बिल है टू बी पेड इन मुंबई टू सी अब बी क्या करता है कि आई विल पे 1 lakh इन मुंबई एंड 2 lakhs इन कोचिन सो ही इज एडिंग वन मोर प्लेस पेमेंट विल बी देयर इन 2 places or 3 places नाउ ही इज एडिंग द प्लेस ऑफ पेमेंट सो देयर विल बी 3 places डिफरेंट प्लेसेस वेयर ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट बट ही इज नॉट टेकिंग माई कंसेंट फॉर दिस आई हैव प्रिपेयर द बिल और मेरा कंसेंट ही नहीं लेता है देन आई विल बी मेड स्कॉट फ्री टेयरिंग ऑफ अ मटीरियल पोर्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ से रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वट एवर और उसका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ही फट गया then that instrument is treated as mutilated or torn and in law it is not recognized as a valid instrument. और यदि किसी ने deliberately कुछ portion उसका काट दिया फाड़ दिया तो then it amounts to a material alteration because some portion is suppressed, oppressed. तो वो दबा दिया तो फिर वो instrument changes its tenor and validity. So that is why it is a material alteration and because of that the party is let off. The party means the basically the original person who created that instrument that is the drawer. The drawer chhut gaya. His liability is removed. His liability is extinguished. He is discharged from making any payment. Now there can be some alterations which are there but they are not material alterations and if they are not material alterations the drawer will continue to remain liable. He will not be discharged from the liability. Now, what are these alterations which are not material? They are changes, they are alterations, but they are not material. Now, and they don't vitiate the instrument, the validity of the instrument. The instrument remains in force. Now, these are alterations made before the issue of the instrument. I have prepared the instrument today, but I have not issued it as yet. Mere hi kabze mein hai. Fir main jab usko After 3 days, I want to give it, I want to issue it. मैं देखती हूँ कुछ changes करने हैं कि कुछ गलती हो गई तो I am making changes and then I issue that instrument to B. Then the changes made before the issue of the instrument. These are not material alterations. They are alterations, but they are immaterial, because I would have made the changes only for those insignificant portions. Alterations made to correct a mistake. I have prepared a bill of exchange, and in that I write the amount should be paid in Bombay. क्या लिखा मैंने उसमें कि अमाउंट जो 3 लाख का पेमेंट करना है बम्बई में देना है, अमाउंट टू बी पेड इन बॉम्बे. तो बाद में मुझे लोग कहते हैं, अरे रे बॉम्बे क्यों लिखते हो, अभी तो बॉम्बे शब्द नहीं यूज करना चाहिए, यू राइट मुंबई. सो नाउ आई विल कट बॉम्बे एंड राइट मुंबई. आई मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग द प्लेस, आई करेक्ट इट. तो बॉम्बे काट के मुंबई लिख दिया मैंने. सो इट इज अ चेंज, बट इट इज नॉट अ मटेरियल चेंज, इट इज नॉट अ मटेरियल ऑल्टरेशन. Alterations made to carry out common intentions of the parties. I have prepared a bill on B in favor of C. So A issues a bill on B in favor of C. Usme likha hai rupees 3 lakhs to be paid with interest at 20%. When I give this to B for acceptance, B kehta hai ki dekho meri baat ho gayi already C ke saath. C ne maan liya. इंटरेस्ट विल बी पेड एट 24%, 2% पर मंथ एट 24%. सो मैं 20% काट के 24% करती हूँ, एंड दिस इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टीज. सो इट इज एन ऑल्टरेशन मेड टू कैरी आउट अ कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. ऑल पीपल हैव एग्रीड टू 24%, सो यू मेक इट 20 काट के 24 करते हैं. दैट इज एग्रीड टू बाय एवरीबडी. सो इट इज नॉट अ मटीरियल ऑल्टरेशन, इट इज एन ऑल्टरेशन विच इज एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी. Alterations made with the consent of the parties. This and the previous one are similar to each other. वहाँ पे explicit consent नहीं है, यहाँ पे है consent. They agree to it. So I make a change, I sign across that change. B also signs and C also signs. That means everybody has agreed to the change in the instrument. So these are immaterial alterations. Now where there are immaterial alterations, the liability continues, it will not get extinguished. All the parties continue to remain liable till the final payment is made. So friends, these are the circumstances under which a party can get discharged from the liability. He gets discharged by full payment, payment in due course. He gets discharged by mutual consent. He gets discharged by the act of B and C without informing A. And there are other circumstances which we have seen, where material alterations will discharge, or law takes care of discharge of the liability due to limitation, due to insolvency, and so on. Now, all these things together help in getting the contract fulfilled and also getting the rights and liabilities fulfilled or extinguished. Okay, thank you.